الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم, یہ ہے تاروں کی دنیا جہاں ہم لیں گے پیارے پیارے ستاروں سے اور میں کروں گی مزے مزے کی باتیں اپنی ماما سے. انجوائے کریں گے گیمز, کریں گے کلرز کیونکہ ہم نے سجائی ہے رنگوں کی کہکشاں. السلام علیکم ماما.
وعلیکم السلام,
آپ کیسی ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سناؤ آپ کیسی ہو؟
میں بھی ٹھیک ہوں ماما. آج ہم بتاؤں کس کے بارے میں کریں گے؟
کس کے بارے میں؟
محمد باقر,
امام محمد باقر علیہ السلام پر. ٹھیک, اور کیوں کریں گے پتہ؟
کیوں؟
کیونکہ امام زین العابدین کے بعد ان کی باری آتی, ان کا نمبر ہے. ٹھیک, امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام ہیں نا. ٹھیک, اور یہ ہمارے پانچویں. ٹھیک, ان کے بعد یہ ہمارے امام ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں.
مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟
آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ امام کا بیٹا امام ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, حضرت ابراہیم ہمارے نبی تھے نا, انہوں نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا اللہ میاں میرے بیٹے جو ہیں حضرت محمد ان کے بیٹے ہوئے نا. ٹھیک, یعنی بیٹے تو نہیں پوتے ہوئے, ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی جو ان کے جو بچے ہیں نا ان سے آپ امام بنانا. تو اللہ میاں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد سے جو ہمارے پروفٹ کی بیٹی تھیں ان کے بیٹے جو تھے وہ پہلے امام تھے, پھر دوسرے امام, پھر تیسرے امام. اسی طرح جہاں فاطمہ کے بچے ہیں نا یہ سارے کے سارے امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین اور اب امام محمد,
امام محمد باقر.
ٹھیک ہے, تو اب امام محمد باقر علیہ السلام کی باری ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے امام محمد باقر کے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟
نہیں.
کیوں؟
کیونکہ مجھے ان کے بارے میں پتا ہی نہیں.
ان کے بارے میں نہیں پتا؟ کوئی بات نہیں, نہ پتا ہونا بری بات نہیں ہوتی.
آپ بتا رہے ہیں.
ہاں, لیکن آپ کو اگر کوئی بات پتا نہ ہونا تو آرام سے کہہ دو مجھے نہیں پتا, آپ مجھے بتا دیں. پتا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, پوچھنا چاہیے آپ کو. اور امام محمد باقر جو ہیں نا, ٹھیک, وہ پتا ہے جب وہ 3 سال کے تھے یا اس سے بھی چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے, تو اس وقت وہ اپنے بابا کے ساتھ امام حسین ان کے دادا ہوئے نا, ان کے ساتھ جناب سکینہ کے ساتھ جناب زینب کے ساتھ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت ان کے ساتھ کربلا گئے تھے. جو کربلا میں ہوا تھا نا وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا تھا. ٹھیک,
مگر انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟
امام محمد باقر نے اس لیے کربلا میں کچھ نہیں کہا تھا, چپ رہے تھے, کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. مجھے بتاؤ کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے, جب حضرت عباس شہید ہوئے, جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے, ٹھیک, چھوٹے سے حضرت علی اصغر شہید ہوئے, تو کربلا میں امام زین العابدین بھی تو تھے نا, انہیں تو کسی نے شہید نہیں کیا.
کیوں؟
اللہ کی مرضی تھی, اللہ میاں نے انہیں بچا کے محفوظ کر کے رکھا تھا. ٹھیک, تو اللہ میاں کے کام ایسے ہوتے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے نا تو پھر بندوں کو, ہم جیسے انسانوں کو بہت کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور پتہ اس وقت اللہ میاں نے کیا کیا تھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو کربلا میں بیمار کر دیا تھا. ٹھیک, بس اللہ میاں نے انہیں بیمار کیا. تو پھر جب یزید والے تھے نا, لشکر والے, उन्होंने आके खैमों में देखा, कोई बच तो नहीं गया, अगर कोई आदमी बच गया हो तो हम उसे मार देंगे, कहा। ठीक, तो उन्हें उन्होंने देखा इमाम जैनुल आबदीन वहाँ पर थे। तो जब उन्होंने देखा कि इमाम को तो इतना बुखार है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने कहा रहने दो, इसकी तो तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने जंग ही नहीं की उनसे। ठीक, और वो ज़िंदा बच गए। इस तरह इमाम हुसैन के बाद जो इमाम था वो ज़िंदा रहे। इसी तरह अल्लाह ने इमाम मोहम्मद बाकिर को भी महफूज करके रखा, बचा के रखा कि दुश्मनों की नज़र उन पर ना पड़े। अगर इमाम मोहम्मद बाकिर को कुछ हो जाता तो हमारे इमाम ही ना होते ना,
महफूज
और इमाम तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, तो अल्लाह उन्हें
रखता है।
महफूज रखता है, बचा के रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इमाम मोहम्मद बाकिर जब कर्बला में थे तो अल्लाह की मर्ज़ी से खामोश थे। जब उसके बाद इमाम बड़े हुए, फिर कर्बला से कूफा गए, कूफे से शाम, शाम में सब कुछ देखा, फिर जब वापस मदीने आए, वहाँ पर सारे लोग जनाबे ज़ैनब से मिलने आए, सबने पूछा क्या हुआ था कर्बला में, हमें बताएं, इमाम ज़ैनुल आबदीन से सब पूछने आए थे, तो वो सारी बातें गौर से सुनते थे। ठीक, उन्हें सब पता चल रहा होता था कि यजीद ने कितना ज़्यादा मेरे बाबा के साथ और मेरे दादा के साथ और मेरे सारे फैमिली वाले बच्चों के साथ और जनाबे ज़ैनब के साथ, उम्मे कुलसूम के साथ, सबके साथ बुरा किया। ठीक है, उन्हें शुरू से ही पता चल
चल
रहा
रहा
था। फिर उसके बाद जब इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बने ना, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिम सलाम भी, मैंने आपको बताया था ना कि जो यजीद के साथी थे उनके साथ अच्छी तरह रहे थे, उनके साथ इमाम ने कुछ उन्हें बुरा नहीं कहा, वो हेल्प मांगने आते थे यजीद के साथी, तो इमाम उनकी हेल्प कर देते थे ना। ठीक, तो ये भी इमाम मोहम्मद बाकर देख रहे थे, उन्हें पता था कि इमाम हुसैन ने मेरे दादा ने किस तरह से किया, फिर उन्हें ये भी पता था कि मेरे बाबा ने किस तरह से दुश्मनों के साथ अपना रवैया रखा और किस तरह उनके साथ पेश आए। ठीक, फिर उसके बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ना, ठीक, तो उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का अपना ज़माना आया, यानी वो ख़ुद इमाम बन गए। और जब वो ख़ुद इमाम बने ना, तो उस वक्त उन्होंने पहला काम पता है क्या किया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक, जिसमें वो जो अच्छे लोग थे ना उन्हें वो पढ़ाते थे, और जो लोग मुसलमान नहीं भी थे ना, जो ईसाई थे, यहूदी थे, नसरानी थे, दूर दूर जो लोग रहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, उन्हें आपने पढ़ाना शुरू किया, और आपने कहा अब मैं सबको पढ़ाऊंगा और सबको बताऊंगा कि हमारे जो शिया हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास सारी नॉलेज उनके पास है, और फिर उसके बाद हम लोग हर जगह हर तरह की जो भी काम होंगे उन सब में सबसे आगे आगे मेरे बंदे होंगे। ठीक है, तो इमाम ने इस तरह से यजीद के साथ और उसके साथियों के साथ जंग की, और इमाम ने सारी पावर हासिल कर ली। क्योंकि जहाँ पे भी लोग जाते थे सोचते थे अच्छा सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, तो पता चलता था कि वो इमाम मोहम्मद बाकिर का स्टूडेंट है ना, उसने इमाम मोहम्मद बाकिर से पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर लोगों को चाहिए होता था कोई अच्छा सा इंजीनियर, हाँ, घर बनाने के लिए या कोई बड़ी चीज़ बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, तो पूछते थे सबसे अच्छा इंजीनियर कौन है, तो कहते थे कि इमाम मोहम्मद बाकिर का स्टूडेंट।
मामा, अब हमारा स्टोरी टाइम हो गया, तो आप एक स्टोरी सुनाएं।
स्टोरी किसके बारे में?
आपकी मर्जी।
मेरी मर्जी? तो मेरी मर्ज़ी ये होगी कि वो इमाम जिनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है उन इमाम की स्टोरी सुनाओ, है ना, ताकि आपको पता चले कि हमारे वो इमाम कितने अच्छे और कितने ज़हीन और कितने इंटेलिजेंट थे। ठीक, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ?
नहीं, बड़ी
पहले एक छोटी सी सुना लेती,
नहीं,
एक छोटी सी,
पहले एक छोटी सी फिर बड़ी सी।
ठीक है। पता है क्या होता था, एक बंदा था जो रहता था बहुत दूर एक जगह पे। ठीक है, और वो साल में एक दफ़ा आता था मक्के में, जहाँ काबा है ना, वहाँ हज करने के लिए, तो वहीं पर इमाम रहते थे। तो एक दिन जब भी वो आता था ना इमाम के पास मिलने के लिए या काबा हज करने के लिए, तो वो हमेशा इमाम के लिए ना अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आता था। तो वो हमेशा गिफ्ट लेकर आता था, और वापसी पे जब वो वापस जा रहा होता था तो इमाम उसको कुछ गिफ्ट नहीं करते थे। ठीक, तो एक दिन जब वो वापस गया इमाम को गिफ्ट करने के बाद, और वापस वो अपने घर पहुंचा ना, तो उसकी बीवी ने कहा, अच्छा इमाम के लिए हमेशा इतने गिफ्ट लेकर जाते, इमाम तो कभी तुम्हें कुछ भी नहीं देते, हमेशा तुम्हारा गिफ्ट ले लेते। तो उसने अपनी बीवी को समझाया और कहा, इमाम हैं, मैं उनको इसलिए थोड़ी कुछ गिफ्ट देता हूँ कि वो मुझे वापस कुछ करेंगे, मुझे मुझे क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उन्हें गिफ्ट करता हूँ। तो ये बात हुई, इसकी बीवी ने कहा अच्छा ठीक है सही। फिर जब अगले साल दोबारा हज का मौसम आया ना, और वो इमाम के लिए फिर गिफ्ट लेकर गया, इमाम उसने इमाम को दिए। ठीक, तो इमाम ने कहा मेरे पास बैठो, मेरे घर में खाना खाओ, थोड़ी देर हम बातें करते हैं। उसने कहा ठीक है। वो बैठा, उसने इमाम के घर में खाना खाया। खाना खाने के बाद इमाम ने ना, उस ज़माने में इस तरह करते थे कि नीचे एक बर्तन रखते थे, ठीक, और ऊपर से पानी डालते थे, और खाना खाने के बाद वहीं पर ना दस्तरखान पर ही हाथ धुलाते थे। ठीक, तो क्या हुआ कि इमाम ने कहा कि वो लेकर आओ बर्तन जिसमें हाथ धुलाते हैं। तो एक बंदा वो बर्तन लेकर आया, और उसमें उसने इमाम का उस शख्स का हाथ धुलाया। ठीक, जब हाथ धुलाया ना, ऊपर से पानी आ रहा था, नीचे वो हाथ धो रहा था, और बर्तन जो नीचे पड़ा हुआ था उसमें पानी जा रहा था ना। तो इमाम ने उससे पूछा, बताओ ये क्या है? तो उसने कहा, उसको धोनी बोलते हैं। उसने कहा, ये तो धोनी है, कपड़े हाथ धोने वाला बर्तन है। तो इमाम ने कहा, अच्छा तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि ये हाथ धोने वाला बर्तन है? उसने कहा हाँ। इमाम ने फिर उससे पूछा, अच्छा अब मुझे बताओ कि ये क्या है? तो उसने कहा, ये तो हाथ धोने वाला बर्तन है। तो इमाम ने कहा, अच्छा इसमें कितना पानी आता है? तो उसने कहा, 5-6 गिलास पानी आ जाता है। तो इमाम ने कहा, अच्छा इसके अंदर जितना पानी डाल सकते हो ना आप डाल लो। उसने कहा अच्छा, उसको समझ में नहीं आया इमाम क्या कह रहे हैं। तो उसको जितना पानी मिला ना, उसने उसके अंदर डाल दिया और उस बर्तन को भर दिया पानी से। ठीक, इमाम ने कहा, अब इसको देखो तो तुम्हें इसमें क्या नज़र आता है? तो उसने देखा ना, तो उसके अंदर उसे बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी नज़र आई। वो हैरान हो गया कि ये ज्वेलरी एकदम इसके अंदर कहाँ से, अभी तो इसमें मैंने पानी डाला था। तो इमाम ने कहा, ये सारा उठा के ले जाओ और अपनी बीवी से कहो हम गिफ्ट देते हैं। आई समझ? वो कह रही थी ना इमाम गिफ्ट नहीं देते। ठीक, तो उस वो हैरान हुआ, उसने कहा आपको कैसे पता चला? तो आपने कहा मुझे अल्लाह बताता है। ठीक, हाँ ना, अल्लाह मियाँ उन्हें नॉलेज देते हैं ना। तो उससे उन्हें पता चलता है। ठीक, तो वो लेके अपनी बीवी के पास गया, अपनी बीवी को दिखाया तो वो खुश हो गई। उसने कहा इमाम को पता चलता है कि इतनी दूर बैठकर हम जो बात कर रहे होते हैं, तो हमारे इमाम इतने ज़्यादा ज़हीन थे। हाँ ना, कि उन्हें पता चल जाता था कि
ये मेरे बारे में कुछ कह रही
नहीं, उनके बारे में नहीं, किसी कोई भी किसी के बारे में, तो
हाँ
उन्हें पता
तो चल
चल
जाता
जाता था। और उन्होंने ये सारी चीज़ें छोटे
है।
वक्त से वो
मामा अब हमारा ब्रेक टाइम हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं,
ठीक है।
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मामा,
जी
अब हमारा कलर टाइम हो गया, आप स्टोरी नहीं सुना सकी, सॉरी।
कोई बात नहीं, लेकिन जितनी स्टोरी सुनी उससे तो समझ आ गया ना। ठीक है, तो
तो
इमाम को
ठीक है
सब कुछ पता
मामा,
होता है।
मैं कलर्स करती हूँ रह के। हाँ
ठीक है, कलर्स के लिए आ जाओ। आज आप किस चीज पर कलर कर रही हो?
किस चीज पर? एक बच्ची है वो अपने भाई को सिखा रही है कुरान।
कुरान सिखा रही है और पढ़ा रही है। और आपको पता है दुनिया का सबसे अच्छा काम
पढ़ाना,
पढ़ना और पढ़ाना है। ठीक, माय प्रॉफिट ने फरमाया था, उनकी एक हदीस है, ठीक, कि सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, यानी कुरान खुद भी सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, और आपको पता है जो बंदा कुरान या कुछ भी, जिस तरह आप लोग स्कूल जाते हो सीखने के लिए जाते हो ना स्कूल, है आप लोगों को स्कूल में आपकी मैम जो है वो डिफरेंट चीज़ें सिखाती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, बताती भी हैं, है ना? ठीक, जी, तो जो बच्चा या अगर कोई बड़ा स्कूल या कॉलेज जाए सीखने और सिखाने का करे ना, तो पता है लामिया क्या करते हैं? जब वो घर से निकलता है ना बच्चा, अल्लामिया फरिश्तों से कहते हैं कि अपने पर बिछा दो इसके लिए,
क्यों?
क्योंकि वो अल्लामिया को बच्चा बहुत अच्छा लगता है। जो बंदा पढ़ने जा रहा होता है ना, तो अल्लामिया उससे फरिश्तों से कहते हैं कि पर बिछा दो, ताकि ये उन परों पर रहे, इसको कुछ भी ना हो, इसको किसी चीज़ में मुश्किल ना हो। फिर परों पर बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें वो पर नज़र नहीं आते, ठीक। और फिर जितने भी फरिश्ते हैं, अल्लाह उन सब से कहता है कि इसके लिए दुआ करो कि ये जो कुछ पढ़ रहा है उसको सही सही यूज़ भी करे।
मामा, मैंने कलर अपने कर लिए।
मुझे ये बताओ कि ये कलर करके आपने क्या सीखा?
ये सीखा कि दूसरे को अगर कुरान सिखाएं या खुद भी सीखे तो उसे सवाब मिलता है। और फरिश्ते भी मिलते हैं, जन्नत भी मिलती है।
फरिश्ते मिलते नहीं हैं,
क्या?
ठीक, जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो अल्लाह मियाँ को पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे इतने अच्छे लगते हैं कि अल्लाह मियाँ उनके पाँव के नीचे फरिश्तों के पर बिछा देते हैं, ठीक। और अगर कोई कुरान पढ़े ना, ठीक, तो बिस्मिल्लाह जब पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह के हर एक लफ्ज़ के बदले में अल्लाह मियाँ 10-10 सवाब देते हैं। हर एक लफ्ज़, बे, सीन, मीम, हर एक के बदले में अल्लाह मियाँ
एक लफ्ज़ देता है,
एक लफ्ज़ के बदले में 10 सवाब देते हैं। और अगर पूरी एक सूरह ख़त्म कर दे तो उसको 1000 टाइम सवाब देते हैं। तो आप अगर हर कलर करके एक अच्छी बात सीखोगी ना, फिर आपको गेम खेलने में भी मज़ा आएगा, है ना?
प्यारे बच्चों, अब आपका फेवरेट प्रोग्राम रंगों की कहकशां का वक्त हुआ ख़त्म। आई रियली एंजॉय एवरी सेगमेंट ऑफ माई प्रोग्राम, और मुझे पता है कि आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा मेरी मज़े मज़े की बातों को। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी चैनल पर आपसे फिर मिलेंगे। मैं इससे भी अच्छा प्रोग्राम लेकर आऊँगी। Only on Hadi TV. Dekhna na bhulna. Khuda hafiz. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Muhammadur Rasuluna taba Nabiullah. Muhammadur Rasuluna taba Nabiullah.